नमस्कार भारत, आज है 14 अप्रैल दिन शुक्रवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। अमेरिका ने अफगानिस्तान में गिराया अपना अब तक का सबसे बड़ा पारंपरिक बम। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, गर्व की बात।
very, very proud of the people. Really another successful...
विधानसभा उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा, दिल्ली में आप उम्मीदवार की जमानत जब्त।
इसका मतलब एक ही है कि जो लोगों से इनका जुड़ाव था वो कट रहा है और कहीं ना कहीं ये लोगों की निराशा झलकाता है।
महाराष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या का बड़ा मामला, क्यों नहीं थम रहा मासूमों को मारने का सिलसिला।
लड़की लायबिलिटी है, लड़की घर में जन्म लेती है तो लड़की के लिए दहेज का इकट्ठा करना अनिवार्य बन जाता है।
पर पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। अमरीकी सेना ने कहा है कि उन्होंने पहली बार अपना अब तक का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम गिराया है। GBU-43 नाम के इस बम को मदर ऑफ ऑल बम्स के नाम से जाना जाता है। इसे सबसे पहले 2003 में टेस्ट किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ। अमरीकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि उनके एक विमान ने अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में इस बम को गिराया है। पेंटागन का कहना है कि इसका निशाना तथा कथित इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों के छिपने के ठिकाने थे। नासा ने कहा है कि शनि ग्रह के चांदों में से एक एनसेलाडस वो इकलौती जगह हो सकती है जहां पृथ्वी के अलावा जीवन हो सकता है। इस चंद्रमा की सतह पर उभरते हुए पानी के नमूनों से लगता है कि वहां जीवन के लिए जरूरी सभी परिस्थितियां मौजूद हैं। ये खोज नासा के उस उपकरण के जरिए की गई जो चंद्रमा के बेहद करीब उड़कर उसकी जांच करता है। बीबीसी संवाददाता के मुताबिक एनसेलाडस निश्चित तौर पर दूसरी दुनिया में जीवन की खोज का केंद्र बन जाएगा और वहां पर जानकारी जुटाने के लिए मिशन तैयार किए जाएंगे। नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर मैरी वायटेक ने कहा,
Well, we don't understand what the structures would be, and there may be no way for us to tell remotely until
हम अभी ये नहीं समझ सकते कि संरचना कैसी होगी, और हो सकता है कि जब तक हम उस समुद्र में ना जाएं तब तक ठीक से कुछ बता ना पाएं। निश्चित तौर पर ये खोज बताती है कि वहाँ हाइड्रोथर्मल क्रिया होती है जो हाइड्रोजन के उत्पादन का पुख्ता संकेत है, और ये हाइड्रोजन रासायनिक ऊर्जा का अच्छा स्रोत है जो जीवन का आधार है। ये थे मैरी वायटेक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लीबिया के एक तटरक्षक ने कहा है कि लीबिया के तट पर 90 शरणार्थियों के डूब जाने का डर है, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। प्रवक्ता ने बताया कि 23 शरणार्थियों को बचा लिया गया है। बचाए गए लोगों ने बताया कि नाव में 120 लोग सवार थे, जिनमें से ज्यादातर लोग यूरोप में सुरक्षित और बेहतर जिंदगी की तलाश में सब सहारा के अफ्रीकी क्षेत्रों से आए थे। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 25,000 शरणार्थियों को बचाया जा चुका है। तटरक्षक अशरफ अल बद्री ने बताया, नाव बहुत कमजोर और डूबने वाली थी। 23 लोगों को बचा लिया गया, उन्हें तटरक्षकों के अड्डे पर ले जाया गया। दूसरी बोट नहीं मिली, मुझे लगता है वो भी तट की तरफ ही आ रही थी। ये थे अशरफ अल बद्री के शब्द। अमेरिका में एक डॉक्टर पर बच्चियों का खतना करने के आरोप लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि देश में ये अब तक का ऐसा पहला मामला है। मिशिगन में अभियोजक ने बताया कि डॉक्टर जुमाना नागरवाला 12 साल से 6 से 8 साल की बच्चियों का खतना कर रही हैं। अधिकारियों को जानकारी मिलने के बाद उनकी जाँच शुरू की गई। अगर डॉक्टर नागरवाला दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है। अमरीका में 1996 से महिलाओं का खतना करना गैर कानूनी है। रूसी ब्रॉडकास्टर चैनल वन अगले महीने यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट को टेलीकास्ट नहीं करेगा, क्योंकि रूस के प्रतियोगियों पर मेजबान देश यूक्रेन ने रोक लगा दी है। इस फैसले का मतलब है कि रूस अब कभी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। यूक्रेन ने जूलिया सुमाइलोवा को यूरोविजन में परफॉर्म करने की इजाजत देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने 2014 में रूस के कब्जे वाले क्रीमिया की यात्रा की थी। ईबीयू ने प्रतिबंध की निंदा की है, जिसने कहा है कि उसने प्रतियोगिता के गैर राजनीतिक स्वभाव को कम किया है। वेनेजुएला में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई हैं। राजधानी काराकस में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन के दौरान अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। अमेरिका ने पहली बार अपने जखीरे में शामिल एक बहुत बड़े बम का इस्तेमाल किया है, जिसे उसका सबसे बड़ा गैर परमाणु बम या मदर ऑफ ऑल बम्स भी कहा जा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान से सटे एक इलाके में इस बम से हमला किया गया, जिसका निशाना वहां छिपे तथा कथित इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी थे। इस बारे में और जानकारी लेने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले वॉशिंगटन स्थित बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से संपर्क किया।
देखें अपूर्व, अमरीकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार ये हमला स्थानीय वक्त से लगभग 7:30 बजे के आसपास हुआ और इसमें मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट या MOAB, जिसे यहाँ बोलचाल की भाषा में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया। ये नंगरहार इलाके में हुआ है जो पाकिस्तान की सरहद से लगा हुआ है और ये पहली बार है जब अमरीका ने इस वजन के बम का इस्तेमाल किया है इस युद्ध में। ये लगभग 21,600 पाउंड यानी तकरीबन 10,000 किलो कह लें आप, उसका ये बम है और इसका पहला परीक्षण 2003 में इराक युद्ध से ठीक पहले किया गया था। अफगानिस्तान में अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन फौज के प्रमुख जनरल जॉन निकोलसन ने कहा है कि इस बम का इस्तेमाल गुफाओं और बंकरों में छिपे इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के खिलाफ किया गया और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर ने इस बारे में और जानकारी दी। सुनिए क्या कहा उन्होंने।
Targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used to move around freely, making it easier for them to target U.S. military advisors.
स्पाइसर कह रहे थे कि हमने उन सुरंगों और गुफाओं को निशाना बनाया जिसके जरिए आईसिस के लड़ाके खुलकर घूम फिर सकते थे और आसानी से अमरीकी और अफगान फौज को निशाना बना सकते थे और इस हमले से हमने उस पर लगाम कसा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमले में आम लोगों को नुकसान नहीं हो, इसके लिए सभी उपाय किए गए और जानकारों का कहना है कि ये बम जमीन के अंदर 200 फीट तक मार कर सकता है और इसे गिराने के लिए विशाल काय जो MC-130 एयरक्राफ्ट होता है उसका इस्तेमाल किया गया।
तो ब्रजेश, क्या इस बारे में कोई जानकारी अभी तक आ पाई है कि ये हमला इस समय क्यों किया गया है?
देखिए, इस पर खुलकर अधिकारी कुछ नहीं कह रहे हैं, ना तो विदेश विभाग की ब्रीफिंग में कहा गया ना ही व्हाइट हाउस में, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का ये मानना है कि अफगानिस्तान के नंगरहार और कुनार इलाकों में इस्लामिक स्टेट की पैठ बढ़ी है और उनकी संख्या करीब 700 के आसपास है, जबकि अफगान अधिकारी इसे 1500 तक बताते हैं। और दूसरी बात यह है कि अमरीकी अधिकारियों का यह भी कहना है कि अफगानिस्तान पर अमरीकी नीति का एक नए सिरे से रिव्यू हो रहा है और आईसिस अलकायदा के स्तर तक नहीं पहुंच जाए इस इलाके में उसकी पूरी कोशिश हो रही है। फौजी अधिकारियों का यह भी कहना है कि आईसिस के खिलाफ कार्रवाई जब से तेज हुई है तभी से उन्होंने इस तरह के सुरंगों और गुफाओं और IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का इस्तेमाल शुरू किया और ये एक तरह से उसे रोकने की मुहिम है।
जी, और राष्ट्रपति ट्रंप या व्हाइट हाउस कार्यालय की तरफ से इस पर अभी तक कुछ कहा गया है?
व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का बयान मैंने आपको पहले बताया, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस पर एक बयान दिया और इसे एक कामयाब मिशन करार दिया है। सुनिए क्या कहा उन्होंने।
Very, very proud of the people. Really another successful job. We're very, very proud of our military.
तो ट्रंप कह रहे थे कि हमें अपनी फौज पर गर्व है और मैंने उन्हें पूरा अधिकार दे रखा है और ये बेहद कामयाब मिशन था। यहाँ के विश्लेषकों का कहना है कि पहले सीरिया और अफगानिस्तान, इस तरह के हमलों से ट्रंप ने संदेश देने की कोशिश की है कि वो एक मजबूत नेता है जो मुश्किल फैसलों से पीछे नहीं हटेंगे। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये उत्तर कोरिया को भी एक तरह से वो चेतावनी देने की कोशिश हो सकता है कि कर रहे हों, कि वो काबू में नहीं आए तो अमेरिका कड़े कदम उठाएगा।
वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने अमेरिका के इस हमले की भर्त्सना की है और इसे अमानवीय बताया है। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो अफगानिस्तान को अपनी प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उधर सीरिया में इस महीने की शुरुआत में कथित रासायनिक हमले की खबर आई थी जिसमें 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात कही गई। इसे लेकर खासी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई थी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सीरियाई एयरबेस पर हमले के भी आदेश दे दिए। अमेरिका के 2 नेवी जहाजों ने 59 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल दागे, पर सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद खामोश रहे। अब उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि उनकी सेना पर रासायनिक हमले करने का आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत मामला है। पूरे ब्यौरे के साथ तृप्ति श्रीवास्तव।
सीरिया के इदलीब प्रांत के खान शेखोन में रासायनिक हमले के आरोपों से घिरे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि रासायनिक हथियारों के आरोप 100% मनगढ़ंत हैं। विद्रोहियों के नियंत्रण वाले खान शेखोन में 4 अप्रैल को हमले में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। प्रभावित लोगों में जो लक्षण पाए गए थे वो नर्व गैस की ओर इशारा करते हैं। अमरीका ने सीरियाई सेना के इस कथित हमले के खिलाफ सीरियाई सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। असद इस बात से इनकार करते हैं कि ये रासायनिक हमले उनकी सेना ने किए हैं। उनका कहना है कि सीरिया में कई सालों से कोई रासायनिक हथियार नहीं थे। असद ने कहा,
There was no order to make any attack. We don't have any chemical weapons.
हमला करने के कोई आदेश नहीं दिए गए थे। हमारे पास कोई रासायनिक हथियार नहीं है। हमने 3 साल पहले ही अपने हथियारों को छोड़ दिया था। अगर हमारे पास हथियार होते भी तो हम उनको इस्तेमाल नहीं करते और हमने इतिहास में कभी रासायनिक हथियार इस्तेमाल नहीं किए हैं। असद का कहना है कि जो वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सही हैं या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने खान शेखोन हमले की जांच की मांग की है। हमले को लेकर रूस ने सीरिया के बचाव में कहा था कि विद्रोहियों ने जिस गोदाम में रासायनिक हथियार रखे थे वहां पर बमबारी की गई थी। इस हमले से प्रभावित लोगों को तुर्की के अस्पतालों में भेजा गया था और तुर्की ने दावा किया था कि नर्व एजेंट सारिन गैस के इस्तेमाल के पुख्ता सबूत मिले। वीडियो फुटेज में लोगों के मुंह से झाग निकल रहा था और इसमें बच्चे भी शामिल थे। खान शेखोन में कथित रासायनिक हमले के बाद अमरीका ने सीरिया के अल शायरात एयरबेस पर मिसाइलों से हमला किया था। अमरीका का कहना है कि इसी एयरबेस से ही रासायनिक हमले के लिए विमानों ने उड़ान भरी थी। वहीं असद ने अमरीका पर चरमपंथियों से मिले होने का आरोप लगाया। असद ने कथित रासायनिक हमले से जुड़े वीडियो फुटेज पर सवाल उठाते हुए कहा,
That the West, mainly the United States, is hand in glove with the terrorists. They fabricated the whole story.
हमें लगता है कि पश्चिमी देश खासतौर से अमरीका चरमपंथियों के साथ है, पूरी कहानी रची गई है जिससे हमले की भूमिका बनाई जा सके। खान शेखोन में जो हुआ वो एक हमला नहीं था, एक नाटक था। पहले सोशल मीडिया और टीवी पर नाटक इन लोगों ने पेश किया, उसके बाद प्रचार और फिर सैन्य हमला। हमें लगता है यही हुआ है। इससे पहले भी सीरिया पर रासायनिक हमले के आरोप लग चुके हैं। सीरिया में 6 साल से चल रहे गृह युद्ध में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा है कि नेपाल से पाकिस्तान के रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद हबीब जहीर के गायब होने के मामले में विदेशी एजेंसियों का हाथ होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं भारत ने दोहराया है कि जासूसी के इल्जाम में कुलभूषण जाधव को यदि फांसी दी गई तो इसे सुनियोजित हत्या माना जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में इन मुद्दों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट के साथ संदीप सोनी।
पाकिस्तान में जासूसी के इल्ज़ाम में कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने का मुद्दा बीते 3 दिन से भारत और पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। विदेश मंत्री और गृह मंत्री इस मामले में संसद में पहले ही बयान दे चुके हैं और कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने एक संवाददाता सम्मेलन में कुलभूषण जाधव को बेकसूर बताया और कहा कि उन्हें अगवा किया गया था।
सच तो ये है कि कुलभूषण जाधव एक अवकाश प्राप्त नौसेना अधिकारी हैं, भारतीय नागरिक हैं। वो पाकिस्तान में कैसे मौजूद हैं, सारी संभावनाएं ये हैं जो हमने पहले भी कहा था और जिसका आप हमें यकीन है कि वो किसी प्रकार से उनको अगवा करके पाकिस्तान ले जाया गया और वो तब से 1 साल से ऊपर पाकिस्तान की हिरासत में हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये भी दावा किया कि तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने भारत के अधिकारियों को कुलभूषण जाधव से मिलने नहीं दिया।
कौंसलर भेंट नहीं हो सकने के कारण उनकी अवस्था क्या है, उनकी स्थिति कहां पर है, इस बारे में कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है और ना ही पाकिस्तानी सरकार ने इस बारे में कोई जानकारी हमें आज तक दी है कि वो कहां पर हैं या वो किस हालत में हैं।
भारत ने एक बार फिर कहा है कि कुलभूषण को यदि फांसी दी गई तो ये सुनियोजित हत्या का मामला होगा।
अगर इस प्रकार का एक जो उनके खिलाफ आदेश पारित किया गया है, एक तथाकथित मिलिट्री कोर्ट द्वारा, अगर उसका क्रियान्वयन किया गया, अगर उसे लागू किया गया, तो भारत की सरकार और भारत के नागरिक इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को एक सोची समझी जानबूझ के की गई हत्या ही मानेंगे।
इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा है कि नेपाल से पाकिस्तान के रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद हबीब जहीर के गायब होने के मामले में विदेशी एजेंसियों का हाथ होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बीच खबरें आ रही हैं कि कुलभूषण जाधव की फांसी और पाकिस्तानी रिटायर्ड कर्नल हबीब जहीर के गायब होने में कोई संबंध हो सकता है। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार और सुरक्षा मामलों के विश्लेषक प्रवीण स्वामी कहते हैं,
इसके बारे में बहुत सारी चर्चा जरूर भारत में हो रही है और कुछ मीडिया में रिपोर्ट आए हैं कि भारत के एस्टेब्लिशमेंट सर्कल इस फॉर्मर ऑफिसर को बार्गेन करना चाह रहे हैं, यानी इनको छोड़ेंगे जब कुलभूषण जाधव छोड़े जाएंगे। लेकिन से कम जिन लोगों से मैंने बात की है वो साफ सीधा कहते हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं है इस केस की और कोई बार्गेन की बात वो करने नहीं वाले हैं, ना उनको पता है कि ये ऑफिसर कहाँ है। ये भी हो सकता है जो कुछ अखबारों में रिपोर्ट हुआ है कि इनके किडनैपिंग की वजह ही पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने ऐसी एक एक्सट्रीम सजा दी। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं और अगर ऐसे हुआ है तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। अगर भारत और पाकिस्तान इस रास्ते पे वाकई चले हैं कि एक दूसरे के ऑफिसरों को किडनैप करने लगे हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत गंभीर मसला रहेगा क्योंकि इस रास्ते का कोई अंत नहीं है।
जानकार मानते हैं कि दोनों देशों ने इस मुद्दे पर बातचीत जल्द शुरू नहीं की तो हालात और बिगड़ने का अंदेशा है।
संदीप सोनी की रिपोर्ट। 8 राज्यों में 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर जीत का परचम लहराया है। क्या इन नतीजों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है? समझने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की रजौरी सीट गंवाना, जो उन्हीं के एमएलए जरनैल सिंह के पंजाब चुनाव लड़ने की वजह से खाली हुई थी, पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है?
देखिए, ये जो बाई इलेक्शन हुए हैं सबसे ज्यादा इसकी अहमियत आम आदमी पार्टी के लिए है। वो पार्टी जिसने 67 सीट जीती थी 2 साल पहले, वही आज थर्ड पोजीशन पे आ जाए और डिपॉजिट लूज कर जाए, ये बहुत बड़ा झटका भी है, वेकअप कॉल भी है आम आदमी पार्टी के लिए। और खासकर पंजाब हारने के बाद और गोवा में अच्छा नहीं करने के बाद, इसका मतलब एक ही है कि जो लोगों से इनका जुड़ाव था वो कट रहा है और कहीं ना कहीं ये लोगों की निराशा झलकाता है आम आदमी पार्टी के प्रति। तो अभी हालांकि टाइम है पूरा टर्म खत्म होने में, लेकिन इनको बहुत सीरियसली लेना होगा, दिल्ली में जम के काम करना होगा और बाहर की सोचनी नहीं, और स्टेट्स की तो सोचना मेरे ख्याल दुर्लभ ही है इस समय। अपने आप को बचा ही लें दिल्ली में तो बहुत बड़ी बात होगी।
अच्छा, मध्य प्रदेश में भिंड की अटेर सीट जहां ईवीएम को लेकर विवाद हुआ था वो कांग्रेस ने जीत ली है, इसके अलावा कांग्रेस को कर्नाटक की 2 सीटें और जीतने में कामयाबी मिली है।
देखिए, कांग्रेस अभी मजबूती से खड़ी हुई है, दूसरी बाईपोल का जो दिख रहा है संदेश, दोनों सीटें कांग्रेस की थी कर्नाटक में वो रिटेन की है और मध्य प्रदेश वाली जो भिंड की सीट है वो भी इन्होंने रिटेन की है। तो कहीं ना कहीं फाइट में दिख रही है कांग्रेस। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी कांग्रेस आगे के चुनाव जो सीट्स में आ रहे हैं, तो शायद थोड़ा सा इनको प्रोत्साहन मिलेगा, कार्यकर्ता को उत्साह होगा इन बाई इलेक्शन, हालांकि बाई इलेक्शन ही होता है।
कुल मिलाकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उपचुनाव के नतीजों को देखें तो ये कुछ संकेत कर रहे हैं या अभी कुछ संकेतों को पढ़ना जल्दबाजी होगा?
दोनों चीजें अपनी जगह हैं। संकेत क्या कर रहे हैं कि रीजनल पार्टीज अच्छा नहीं कर रही हैं। एक सीट जो जीती है धौलपुर की भाजपा ने वो बसपा के पास थी, तो बसपा का ग्राफ तो नीचे गिरता दिख रहा है। दूसरी जो जीती है जो उनके पास नहीं थी वो दिल्ली वाली है, बाकी 3 उन्होंने रिटेन की है भाजपा ने। तो भाजपा की जो बढ़त है वो तो इस उपचुनाव में भी दिखने को आ रही है। और क्या आप इसमें से संदेश निकाल सकते हैं कि लोगों का मन हट रहा है क्षेत्रीय पार्टियों से, उनको वो विकल्प के रूप में कम देखने लगे हैं, या ये जल्दबाजी होगी? मुझे लगता है आगे के भी चुनाव में जरा इसको बारीकी से देखना पड़ेगा।
वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। और अब आज के अखबारों की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तृप्ति श्रीवास्तव अखबारों के साथ स्टूडियो में है। तृप्ति, उपचुनाव के नतीजों की चर्चा तो होगी ही अखबारों में।
बिल्कुल, अभी जैसे नीरजा जी पूरा विश्लेषण कर रही थी, आज तमाम अखबारों में चुनाव को लेके खबर को छापा गया, चाहे अमर उजाला हो, मेरे सामने भी दैनिक भास्कर भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि 2 साल बाद राजौरी गार्डन सीट पर आपकी जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त होने को सभी न्यूज़पेपर ने काफ़ी प्रमुखता से छापा है। वहीं पर अगर हम जनसत्ता की बात करें तो जनसत्ता ने लिखा है कुलभूषण जाधव को लेकर भारत और पाकिस्तान में कड़वाहट बढ़ने से सिंधु जल संधि पर जो सचिव स्तरीय भारत पाकिस्तान की वार्ता थी वो टल गई। ये अमरीका की मध्यस्थता में होने वाली थी और वार्ता वॉशिंगटन में 11 से 13 अप्रैल को थी, लेकिन फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भारत ने ये वार्ता रद्द कर दी। वहीं एक हिंदुस्तान टाइम्स ने बहुत ही दिलचस्प खबर छापी है कि मोदी जो हैं वो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं और पिछले साल बड़े नेताओं के 325 अकाउंट्स में नरेंद्र मोदी जो हैं उनको सबसे ज़्यादा 70 लाख लोगों ने फॉलो किया है और उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और पोप फ्रांसिस भी उनके काफ़ी पीछे हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं। एक और मैं चलते चलते खबर बता देती हूँ जो दैनिक जागरण ने लिखी है, जहाँ मूक बधिर छात्राओं के साथ काफ़ी बदसलूकी की गई है और आरोप है कि प्रवेश परीक्षा में उनकी जाँच के दौरान उनके साथ बदतमीजियाँ की गई हैं।
जी, तो ये थी आज के अखबारों की बड़ी खबरें। धन्यवाद तृप्ति।
बीबीसी इंडिया बोल।
कश्मीर में वोटर नाराज क्यों? पिछले विधानसभा चुनाव में 60% मतदान हुआ, पर अब श्रीनगर उपचुनाव में 100 में से 7 लोगों ने वोट दिया। कश्मीर में माहौल सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 15 अप्रैल शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1800 11 7000 या 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारत में कन्या भ्रूण हत्या कोई नई बात नहीं है, हालांकि गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग की जांच कराना अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र में 19 भ्रूण मिले तो ये मुद्दा एक बार फिर से रोशनी में आ गया है। बीबीसी संवाददाता योगिता लिमय ने महाराष्ट्र में पीड़ित परिवारों से बात करके ये रिपोर्ट भेजी है।
मुंबई से 400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर के नज़दीक मैं एक सूखे हुए नाले के पास में खड़ी हूँ। मुझे यहाँ से हाईवे दिख रहा है, काफ़ी गाड़ियाँ दिख रही हैं, लेकिन जहाँ मैं खड़ी हूँ वो एक सुनसान जगह है। मेरी दाईं तरफ एक खेत है जिसमें ट्रैक्टर चल रहा है और बाईं तरफ खुली ज़मीन है। कुछ हफ्ते पहले यहाँ पर 19 मृत फीटिसाइट मिले थे जिन्हें ज़मीन में गड्ढा खोद के दफनाया गया था। पुलिस ने मशीनें लाई और जब उन्होंने ज़्यादा गहराई तक ढूंढा तो उन्हें ये छोटे शरीर नीले प्लास्टिक बैग में लिपटे हुए मिले। पुलिस का ये मानना है कि यहाँ एक बड़ा फीमेल फीटिसाइड का रैकेट चल रहा था। ये मामला तब सामने आया जब गर्भपात के दौरान एक महिला की मौत हो गई। इस महिला का नाम स्वाति जमदाड़े था और उसकी उम्र 25 साल की थी। इस महिला के पिता सुनील जाधव का ये कहना है कि मेरी बेटी के बच्चे का लिंग परीक्षण टेस्ट हुआ था जिसके बाद पता चला था कि उसके गर्भ में बच्ची है। मेरी बेटी का पति नहीं चाहता था कि उन्हें लड़की हो, इसलिए उसका जबरन गर्भपात करवाया गया। इस मामले की पुलिस शिकायत किए जाने के बाद ये मामला प्रकाश में आया। सुनील जाधव के घर की दीवार पर स्वाति की एक बड़ी सी फोटो टंगी हुई है। वे एक रंगीन साड़ी पहने हुए हैं और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। जाधव जब जब इस फोटो को देखते हैं अपने आंसू थाम नहीं पाते। वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी बेटी की मौत व्यर्थ न जाए।
मेरी बेटी तो वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई कदम उठाया जाता है तो कम से कम ऐसी गतिविधियों को रोक जरूर लगेगी। भारत में एक लड़की का पिता होने के नाते आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। उसे पालने पोसने के अलावा उसकी शादी करनी पड़ती है, लेकिन उसका क्या फायदा जब अंत ये हो तो।
कुछ हफ्ते पहले 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। इस मामले में स्वाति के पति और 3 डॉक्टरों को कस्टडी में लिया गया है। दीपाली काळे एक अधिकारी है जो इस मामले की जांच कर रही टीम का नेतृत्व कर रही है।
जेव्हा आम्ही इंट्रोगेट केला
हमें जांच में पता चला कि इस रैकेट में चार बिचौलिए थे और इस पूरी गतिविधि में शामिल एक डॉक्टर लिंग के आधार पर हफ्ते में 2 से 3 गर्भपात कर देता था।
मैं उस अस्पताल के सामने खड़ी हूँ जहाँ पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी गर्भ लिंग निदान और अबॉर्शन किए जा रहे थे। ये एक पीले रंग की 2 मंजिलों की बिल्डिंग है जो छोटे शहर महसाल की एक पतली गली में स्थित है। गवर्नमेंट के अधिकारियों ने इसको सील कर दिया है और मैं अभी इसके दरवाजे की तरफ चल के जा रही हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस पे एक नोटिस चिपकाई गई है। ये एक पत्र है स्वास्थ्य मंत्रालय से और इसमें बताया जा रहा है कि इस अस्पताल को क्यों लॉकडाउन किया गया है। गर्भलिंग निदान करना भारत में गैर कानूनी है और अगर इसे करते हुए कोई पकड़ा गया तो उन्हें कड़ी सज़ा हो सकती है, वो जेल भी जा सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे केंद्र भारत के कई हिस्सों में मौजूद हैं।
2001 से लगातार हम देख रहे हैं कि बेटियों की तादाद घट रही है। हर साल 6 लाख से भी ज़्यादा लड़कियां गायब होती जा रही है क्योंकि लड़का लड़की सोनोग्राफी का इस्तेमाल करके देखना, उसके बाद देखकर पता करना बेटी है लड़की है और फिर उस लड़की का समापन करना।
सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे कई सालों से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ काम कर रही हैं। भारत में क्यों ज्यादातर लोग बेटियां नहीं चाहते हैं इसका कारण बताते हुए वे कहती है,
लड़की लायबिलिटी है, लड़की घर में जन्म लेती है तो लड़की के लिए दहेज का इकट्ठा करना अनिवार्य बन जाता है। ये यहाँ का जो स्थिति है इसको हमें समझना पड़ेगा। साथ साथ में दूसरा भी मसला है कि सिक्योरिटी का मुद्दा बड़ा गंभीर होते जा रहा है। तो माँ बाप को लगता है कि जन्म दे, सिखाए, पढ़ाए, नौकरी काम पे भेजे और ऊपर से उसकी चिंता करते बैठे, तो उसके बजाय अच्छा है गर्भ के समापन ही कर दे पहले। तो इस ये 2 वजह है, अहम वजह ये 2 है कि एक है दहेज और दूसरी है सुरक्षा। इन दोनों कारणों की वजह से भारत की बेटियों का जन्म लेना मुश्किल हो गया है।
भारत में दहेज गैर कानूनी है लेकिन कानून का असर जमीन पर कम ही नजर आता है। भारत में अभी भी कई राज्यों में लिंग अनुपात बिगड़ा हुआ है। बेटियों के पैदा होने पर कोई जश्न नहीं मनाया जाता और कई बेटियों को तो जीवन में आने से पहले ही मार दिया जाता है।
ये थी महाराष्ट्र से योग्यता लिमय। और अब चर्चा क्रिकेट की। कल आईपीएल के 11वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को बड़ी आसानी से 8 विकेट से हरा दिया। ईडन गार्डन्स के मैदान पर किंग्स 11 पंजाब ने 9 विकेट पर 170 रन बनाए थे और कोलकाता नाइट राइडर्स ने मात्र 2 विकेट खोकर 3 ओवर 3 गेंद पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब खेल जगत की अन्य खबरें।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूं राखी शर्मा। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और मेन सिंगल्स खिलाड़ी बी साई प्रणीत और के श्रीकांत ने सिंगापुर ओपन में खेले गए अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज कर तीसरे दौर में जगह बना ली है। सिंधु ने महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में इंडोनेशिया की फित्रियानी फित्रियानी को 1 घंटे तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में 19-21, 21-17, 21-8 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में अब सिंधु का मुकाबला ओलंपिक गोल्ड विजेता स्पेन की कैरोलिना मारिन से होगा। मारिन को सिंधु ने हाल ही में इंडिया ओपन के फाइनल में हराया था। इससे पहले दिसंबर में दुबई मास्टर्स में भी सिंधु मारिन पर भारी पड़ी थी। इसके अलावा मेन सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रणीत ने चीन की कियाओ बेन को 21-15, 21-23, 21-16 से मात दी। तीसरे दौर में प्रणीत का मुकाबला थाईलैंड के खिलाड़ी से होगा। के श्रीकांत दूसरे दौर में इंडोनेशिया के मौलाना मुस्तफा को 18-21, 21-19, 22-20 से हराने में कामयाब रहे। वहीं 16 बार के विश्व चैंपियन देश के क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पंकज ने पूर्व एशियन बिलियर्ड्स चैंपियन रुपेश शाह को 5-2 से शिकस्त दी। अगर पंकज फाइनल मुकाबला जीतते हैं तो ये उनका 7वां एशियाई खिताब होगा।
और सभा समापन से पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार।
अमरीकी सेना ने कहा है कि उन्होंने अफगानिस्तान में पहली बार अब तक का अपना सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम गिराया है और इस बम को मदर ऑफ ऑल बम्स के नाम से भी जाना जाता है। नासा ने कहा है कि शनि ग्रह में के चांदों में से एक एनसेलडस वो इकलौती जगह हो सकती है जहां पृथ्वी के अलावा जीवन हो सकता है। लीबिया के तटरक्षक ने कहा है कि लीबिया के तट पर 90 शरणार्थियों के डूब जाने का डर है जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अमरीका में एक डॉक्टर पर बच्चियों का खतना करने के आरोप है और ऐसा माना जा रहा है कि देश में ये अब तक का पहला मामला है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com, जहां आप दुनिया भर की खबरें और उनका विश्लेषण देख पढ़ और सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया शाकिर आलम ने। अपूर्व कृष्ण को अनुमति दें। नमस्कार।